मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 4 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी रानी सिन्हा का जो आरा बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज घटना के रूप में मैं कुछ विशेष बात तो आपसे नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन जो अमेरिका का हमारा जो लोकतंत्र है, मैं वैश्विक अर्थ में कह रहा हूं, हमारा तो अपना लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, लेकिन वैश्विक शब्दावली के तहत अमेरिका का जो लोकतंत्र है जिसे हम एक महान लोकतंत्र कहते हैं, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देने जा रहा हूं। मुख्य विषय के तहत हम लोग विश्व आतंकवाद पर बात करेंगे थोड़ा बहुत। एक लेख आज दैनिक भास्कर में छपा है और चूंकि वो लेख योगेंद्र यादव जी का है, जिन्हें मैं बहुत आप यूं कह लीजिए कि बुद्धिजीवी मानता हूं, बहुत ही बौद्धिक व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही संतुलित व्यक्तित्व है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसीलिए जब भी मुझे योगेंद्र यादव जी के बारे में या उनके द्वारा लिखी गई कोई चीज पढ़ने को मिलती है मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। उन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में 10 पॉइंट्स लिखे हैं और उनके इस लेख का जो शीर्षक भी है वो है अमेरिका के महान लोकतंत्र, इन्वर्टेड में है, महान लोकतंत्र की जन्नत की हकीकत। जन्नत को भी उन्होंने सिंगल इन्वर्टेड में रखा है। हम अमेरिका को एक बहुत ही महान देश मानते हैं, जन्नत यानी कि स्वर्ग मानते हैं, और वहां बहुत बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है। मुझे लगता है कि शायद ब्रिटेन के बाद अमेरिका का ही नंबर था। अमेरिका, आपको मालूम होगा कि पहले ब्रिटेन के अधीन था अमेरिका, मतलब ब्रिटेन ने अमेरिका पर भी शासन किया है। अमेरिका में भी फिर उसी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा जिस तरह से भारत में हुआ, और जब मैं अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि अगर यहां मैं अमेरिका शब्द मिटा करके और भारत शब्द लिख दूं तो वो भी उसी तरह से सही हो जाएगा, उसी पैटर्न पर दिखाई देता है जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, लगभग उसी पैटर्न पर अमेरिका में भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और फिर ब्रिटेन से अमेरिका आजाद हो गया। ये बात बहुत पुरानी है, लगभग 250 साल पुरानी, 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था, मतलब आप यूं कह लीजिए कि फ्रांस से भी पहले का यह घटना है। दोस्तों इतना पुराना लोकतंत्र, ठीक है, अमेरिका की बात मैं खासकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का एक प्रकार से प्रभुत्व जैसा दिखाई देता है। लोग अमेरिका जाने को लालायित रहते हैं, चाहे उन्हें वहां रहना हो, चाहे नौकरी करनी हो। जब हम सुनते हैं कि अमेरिका हमें वो रह रहा है, नौकरी कर रहा है, तो हमारे मन में भी बड़ी इच्छा पैदा होती है, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, यार देखो वो अमेरिका में रह रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नरक है। अमेरिका में हम लोग 2-3 बार गए हैं, लंबे लंबे समय तक रहे हैं। सच पूछे तो लगभग पूरा अमेरिका मैंने और मेरी पत्नी ने घूमा है, 2-2.5 महीने तक हम घूमते ही रहे हैं अमेरिका में, तो अमेरिका को थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला है। तो नो डाउट उसकी अपनी बहुत सी खूबियां भी हैं, बुराइयों से अधिक उसकी खूबियां हैं। रहने लायक देश है नो डाउट, नौकरी करने लायक देश है नो डाउट। तो यहां मैं जो महान लोकतंत्र जो इन्वर्टेड में लिखा है कि जो महान हम मानते हैं, उसके बारे में उन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं, 10 पॉइंट्स यहां दिए हुए हैं। दोस्तों खासकर आपको बस उन 10 पॉइंट्स को ही देखना है और आप इस तरीके से इसे देखने की कोशिश करें कि ठीक है, एक तरफ तो हमारा भारत का लोकतंत्र है और हम अपने लोकतंत्र को लेकर के दुनिया भर की आलोचनाएं करते हैं, और यह नहीं कि हम गलत आलोचनाएं करते हैं, उसकी जो कमियां हैं वो बताई ही जानी चाहिए और वो कमियां हैं। लेकिन जब हमें पता लगता है कि आज अमेरिका जैसे देशों में ये हाल हो रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि भाई ठीक है, फिर जब अमेरिका जैसे देश में ऐसा हो रहा है तो भारत में तो जो अभी लगभग 75 साल पुराना ही लोकतंत्र है वहां अगर हो रहा है तो फिर ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, या बुरी बात है भी तो शायद उतनी बुरी बात नहीं है, उतनी बुरी बात अगर है भी तो ठीक है, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद शुरुआत में ऐसा ही होता है। इस तरीके से आप में एक जो रिजिडिटी है, वो रिजिडिटी जो कठोरता है, जो निर्ममता है लोकतंत्र के प्रति, या जो आक्रोश का भाव होता है लोकतंत्र के प्रति, वो कहीं ना कहीं कम पड़ता है। यहां मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, मैं वो 10 पॉइंट आपको नहीं गिना रहा हूँ, दैनिक भास्कर का वो जो आर्टिकल है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जा करके आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और 10 पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे बड़ी बात है आपको मजा आएगा। और लोकतंत्र का जो एक दूसरा पक्ष है जो जो खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में है वो आपके ध्यान में आएगा, तो आपको थोड़े से डायमेंशंस मिलेंगे समीक्षा के लिए। देखिए जो अमेरिका में अभी चुनाव हो रहा है, अमेरिका में भी जो लोकतंत्र है, भारत में जो लोकतंत्र है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। भारत में जो लोकतंत्र है वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि जो हम नागरिक हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, फिर प्रतिनिधि अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं जिन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं मोटे तौर पर। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है, हिंदी में हम इसे कहते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, यानी कि वहां के लोग सीधे सीधे अपने हेड का चुनाव करते हैं, मतदान होता है। अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे, वहां जो हेड है वो राष्ट्रपति है, हमारे यहां जो हेड है वो प्रधानमंत्री है, तो वहां राष्ट्रपति को ही पब्लिक सीधे सीधे चुन रही है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। इसलिए देखिए दो नाम आप सुन रहे हैं, ट्रंप जो अभी राष्ट्रपति हैं, दूसरे जो बाइडेन जो दूसरी पार्टी के हैं। तो वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है फिर वहां वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि अगर ये अपना बहुमत खो देते हैं संसद में, है नहीं है उस सच पूछे तो उसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका संसद में बहुमत रहेगा आपकी पार्टी का तो आपको ये जरूर सुविधा होगी कि कोई भी आप कानून बनाएंगे आराम से बना लेंगे, आप संसद से जब बजट पारित कराना चाहेंगे तो आप आराम से करा लेंगे, तो आपके लिए वो सुविधा हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना बहुमत खो भी देते हैं, बहुमत के आधार पर आप बनते ही नहीं है उस तरीके से, तो फिर आप खोते भी नहीं है। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और मैं चाहूंगा कि अभी आपको थोड़ा सा अमेरिका का जो संविधान है वो थोड़ा सा जान लेना चाहिए, बहुत ही मजेदार है। और ब्रिटेन का आप जानेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान और भारत के संविधान में बहुत समानता है। तो दोस्तों ये आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है वैश्विक आतंकवाद। और मैंने इस विषय का चयन क्यों किया है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ समय से आप अखबारों में देख रहे हैं कि किस तरह से फ्रांस में आतंकवादी हमले हुए, इसके बाद अभी अभी फिर से एक घटना आज आपको सुनने को मिली होगी, अखबारों में पढ़ने को और न्यूज में सुनने को मिली होगी कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, बहुत ही खूबसूरत देश है ऑस्ट्रिया, बहुत प्यारा देश है, पूरे यूरोप में मुझे अगर सबसे खूबसूरत प्राकृतिक दृष्टि से अगर देश लगा तो ऑस्ट्रिया, उसकी जो राजधानी है वियना, वहां भी एक यहूदी धर्म स्थल है, उसके पास गोलीबारी हुई, 6 लोग मारे गए। तो ये आतंकवादी घटनाएं अभी धीरे धीरे यूरोप में भी काफ़ी फैलने लगी हैं। इस बीच में केवल यही नहीं बल्कि जिनकी चर्चा बहुत कम होती है, बकायदे कनाडा के क्यूबेक प्रांत है वहां इस तरह की आतंकवादी घटना घटित हुई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बारे में अखबारों में भी कुछ आया था, वहां आतंकवादी घटनाएं घटी। तो इस तरह से जो आतंकवादी घटनाएं हैं, अभी की बात नहीं पिछले कुछ सालों से और भी देखने को मिल रहा है, वो अब यूरोप को अपने चपेट में ले रहा है। आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये तो देखिए गल्फ का जो इस्लामिक देश है वो तो क्या कहते हैं एशिया के पास में है, तो ये यूरोप में कैसे पहुंच गए। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा एटलस देखने की आदत डालें, जो मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करके कहता रहता हूं, एटलस देखें। उदाहरण के तौर पर अभी फ्रांस ने बकायदे कुछ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है और उसमें कुछ आतंकवादी मारे भी गए हैं। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहां फ्रांस ने इस तरह का अंजाम दिया है, तो आपको एक शब्द पढ़ने को मिलेगा कि फ्रांस की वायुसेना ने पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन के 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। एक सिंपल सी घटना है, लेकिन सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले के लिए यह सिंपल घटना नहीं है। यहां बकायदे लिखा हुआ है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में, तो आपको चाहिए कि आप बकायदे जो वेस्ट अफ्रीका है उसमें थोड़ा सा माली को ढूंढने की कहां है, यह आपको करना चाहिए। धीरे धीरे देखेंगे कि आपका नक्शा, ये पूरे की पूरी दुनिया का नक्शा आपके दिमाग में आ जाएगा, और ये फिर आपकी बहुत मदद करेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में मदद करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में मदद करेगा, ज्योग्राफी को समझने में मदद करेगा, और ये प्री एग्जामिनेशन में तो आपके लिए इतने सारे नंबर बटोर देगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तैयारी दोस्तों इसी तरह से होती है। तो अब धीरे धीरे ये जो आतंकवाद है ये पूरे के पूरे यूरोप में आप देख रहे हैं कि फैलने लगा है। और ये जो यूरोप है ये वो देश है, यूरोप के कुछ देशों ने तो खासकर अभी जब शरणार्थियों की समस्या पैदा हुई थी तो बकायदे वेलकम किया अफ्रीकी देशों में जब शरणार्थी की समस्या आई और या दूसरे किस तरह के जब शरणार्थी आए तो इन्होंने बकायदे उनका स्वागत किया, ये लोग आए रहे। और अब इस तरीके की घटनाएं वहां घटित हो रही हैं, मतलब ये मत समझिएगा कि वहां इस्लाम या इस्लाम नहीं कहना चाहिए कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस्लाम शब्द इसलिए लोग इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि ये नारे लगाते हैं इस्लाम धर्म के रक्षा के लिए, लेकिन आतंकवादियों का सच ये है कि कोई धर्म होता नहीं है, लेकिन चूंकि ये इस्लाम के नाम पर करते हैं तो इसीलिए अखबारों में बोलचाल में जनरली इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों यहां मैं आप लोगों को एक हिस्सा पढ़कर सुना रहा हूं। हमारी एक राजनयिक रही हैं भाष्वती मुखर्जी, है ना, जो हमारी डिप्लोमेट थी, इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर थी। उन्होंने उनका एक अंश छपा है अखबार में, वो मैं केवल आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं। बस इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको विश्व आतंकवाद के बारे में पता लग जाएगा। और अभी आपने देखा सुना होगा कि जब यूएनओ के 75 ईयर्स हुए हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उसको एड्रेस किया था तो बार बार इस पर वो जोर दे रहे थे कि ये जो आतंकवाद है किसी एक देश का आतंकवाद नहीं होता, ये विश्व का आतंकवाद होता है और इसे सबको मिल करके इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं कि यूएनओ में सुधार होना चाहिए सुधार होना चाहिए, तो उसमें यह भी होता है कि अब नए मुद्दे आ गए हैं। अब विश्व आतंकवाद को अब अलग नहीं कर सकते, आप जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हो रही हैं उसको आप अलग नहीं कर सकते, तो अब यूएनओ को बहुत प्रोमिनेंटली इन सब विषयों को भी लेना चाहिए। तो देखिए अब हमारी जो पूर्व राजनयिक भाष्वती मुखर्जी रही हैं वो क्या लिखती हैं, आप बस ध्यान से सुन भर लीजिएगा, बस दैट्स ऑल। भारत ने जिस पिशाच को आते देख लिया था उसे यूरोप ने अपने यहां चुपचाप पैर पसारने का मौका दिया। यूएन में मैंने 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए चेतावनी दी थी कि हम जिस आतंकवाद का सामना कर रहे हैं वह एक दिन पूरी दुनिया को शिकंजे मिलेगा। उस समय हमसे कहा जाने लगा कि आपके लिए जो आतंकवाद है वह दूसरे पक्ष के लिए इंसाफ की लड़ाई भी हो सकती है। यूरोप की लिबरल सोसाइटी ने इसे हमारी संकीर्णता समझते हुए नजरअंदाज किया। आतंकी तत्वों ने इसका पूरा लाभ उठाया और 25 साल में यूरोपीय देशों में स्लीपर सेल तैयार कर लिए। आज यूरोपीय देश हैरानी से देख रहे हैं कि आतंकी तत्व उन लोगों के सिर कलम करने पर आमदा हैं जिन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का रहनुमा समझा जाता था। अब उन देशों को आतंक का दर्द समझ में आएगा। उन्हें लगता था कि समस्या भारत और उसके आसपास के मुल्कों की है, अब उन्हें समस्या को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ये आप यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से हालांकि पूर्व राजनयिक का स्टेटमेंट है लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सोच शुरू से ही इस प्रकार की रही है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं राजकुमार लड्डा जी जो फरीदाबाद हरियाणा से हैं, रीपा दहिया, शिवेंद्र, उमाकांत वर्मा, धनेश कुमार शर्मा, सूरज सिंह जादौन मुरैना मध्य प्रदेश से और बिन्नी कुमारी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।